તારીખ 21/3/1999 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 581 અને 583 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 861.
પરમાત્મા દેવ બોધ કરો સાહેબજી શ્રી રાયચંદ્ર વિરવજીભાઈ મુકામ મુંબઈ બંદર. શ્રી મોરબીથી લિખિતન આપનો આજ્ઞાંકિત સેવક સૌભાગ્ય નમસ્કાર. આપનો કૃપાપત્ર હાલમાં નથી તો લખશો. સંસાર સંબંધી કાંઈ પણ વાત આપ પાસે કોઈ વખત થઈ આપને ઠીક પડતું નથી તે સમજવામાં છતાં ભૂલ આવી જાય છે તો માફ કરશો. આપણે સાંસારિક પરિસ્થિતિ કે વિષય મેં લિખને કી મના કરને ભી और फिर भी लिखते तो अंगमा हो जाता था. वो बात समझ में थी फिर भी वो भूल हो जाती है मेरे से, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ. ऐसा करके यहाँ माफ़ी मांग लिया है. तो गोसरिया ने तो कहीं करव नहीं, પણ હજુ કોઈ વેપારનું કામ બને તો મને ઈચ્છા કરી. છતાં થવું હશે તે થશે તેની ચિંતા નથી. પણ ગોસળીઓને હું ત્યાં આવીએ દિવસ 8-15 કદી રહેવાનો આપના સમાગમને લીધે થાય. પણ આપને દુકાનના કામના પ્રસંગોને લીધે કદી દિવસે જોઈએ તેવો સમાગમ ન થાય તો રાતના વખતમાં પણ થાય તો ઠીક. શું કહે છે પત્ર મહિનાલે છે ને રૂની કપાસની રૂઈ કી મોસમ હોતી હૈ. દિવસ છે તો ઉનકો તો કોઈ કામ નહીં થા, લેકિન મેરે કો કામ કી ઈચ્છા રહેતી હૈ. तो उनके आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर थी तो व्यापार के काम की इच्छा मेरी तो है, लिख दिया मेरी इच्छा तो है. फिर भी जो भी होना होगा वो होगा. हम दोनों वहाँ बम्बई आ रहे हैं प्रत्यक्ष सत्संग के लिए. 8-15 दिन रुकेंगे और शायद आपको दिन में व्यापार का काम रहेगा तो दिन में तो शायद उसका समागम नहीं हो पाएगा. तो रात के समय में तो समागम होगा यानी प्रसन्न सत्संग मिलेगा तो भी ठीक है, वो भी मंजूर है, हम लोग आएंगे. ऐसा लिख रहे हमें. हूँ प्रभात में चाइलो साइले जाऊँ छो कि काले सवारे साइले साइला जवान हो छो अपने गाँव उम्र भी थी पत्र लगे पहनू काम जो आज ना हतु ते करू छे दुकान नो भाड़ो उतर तो करू छे. मैं कहीं दुकान भाड़े राखी है मोरबी में, सीजनल व्यापार करता था. इसलिए यहाँ का जो मोरबी का काम था वो ख़त्म किया है. दुकान का किराया भी छोड़ दिया है. हमें हमारा आईनू काम नहीं, बीजू पर हाल में जनातु नहीं. તો સાયલા ગયા, પછી ઘુસળિયાને લઈને ત્યાં આવવાનો વિચાર છે. તો સાયલા જા કરકે અપને મિત્ર કો લેકર કે વહાં આયેંગે, એસા વિચાર. આ કાગળ પહોંચતા જીવને બોધરૂપ કાગળ તરત સાયલે લખશો, કૃપા છે તેવી રાખશો. એ કાગળ પહોંચને પર આપ હમકો કુછ ઉપદેશ મિલે એસા પત્ર લિખિયેગા, ઓર જીતની કૃપા હૈ વૈસી હી રખિયેગા. ચિઠ્ઠી લિખા क्या होता है, जब तक पूर्ण मोक्ष दशा नहीं होती तो मुमुक्षु को और ज्ञानी साधक को दोनों को दो प्रकार के परिणाम चलते हैं. एक आत्मकल्याण के विषय में भी चलते हैं और कुछ परिणाम संसार के उदय के संबंधित भी चलते हैं. जब अभिप्राय बदल गया है और प्रायोरिटी बदल गई है तो मुख्य रूप से तो आत्मकल्याण ही करना है. तो जो परिणाम उदय रूप प्रारब्ध के कारण से आते हैं उनका निषेध आता है, उस विषय में खेद होता है, दुख होता है, वेदना होती है. हम नहीं चाहते हुए भी ऐसे हमारे परिणाम क्या होते हैं, ऐसा बनता है. तो चलते हुए स्वाध्याय में पत्रांक 581 चेतन ने चेतन पर्याय होय અને જડને જડ પર્યાય હોય. ચેતન પદાર્થ કી અવસ્થા પર્યાય માને અવસ્થા, પારિભાષિક શબ્દ હૈ શાસ્ત્ર કી પરિભાષા મેં. પર્યાય કો કહેતે હૈ હાલત, દશા ઓર સ્વભાવ કો કહેતે હૈ ગુણ, યાને શક્તિ, વસ્તુ કી શક્તિ. और पदार्थ है द्रव्य, वस्तु को कहते हैं द्रव्य. तो जो चेतन पदार्थ है उसकी अवस्था भी सचेतन होती है और जो जड़ जड़ पदार्थ है उसकी अवस्था जड़ रूप होती है, चेतन रूप नहीं होती. ये यही पदार्थ की स्थिति है, जड़ चेतन के पदार्थ की यही स्थिति है. चेतन की चैतन्य पर्याय, जड़ की जड़ पर्याय. फिर पर्याय में दो प्रकार होते हैं. पर्याय स्वाभाविक भी होती है और विभाविक भी होती है, मैंने विकारी भी होती है, विकृत भी होती है. यानी पर्याय शुद्ध भी होती है और अशुद्ध भी होती है. दोनों प्रकार जड़ चेतन दोनों में बनता है. प्रत्येक समय में जो जो परिणाम होते हैं वह वह पर्याय है. प्रत्येक समय में जो जो परिणाम होते हैं उसी को ही पर्याय कहते हैं. परिणाम को हो, पर्याय को हो, दशा को हो, स्थिति को हो, हालत को हो, और पदार्थ की पोजीशन को हो, एक ही बात है. विचार करने पर यह बात यथार्थ लगेगी. तो परिणाम के विषय में आप विचार करोगे तो आपको ये बात बराबर समझ में आएगी. लिखने का फिलहाल कम बन सकता है, अतः कितने विचार लिखने का बन नहीं सकता, नहीं बन पाता. ऐसे लिखने का विचार ही कम हो गया है खुद को, तो कितने विचार वो बता नहीं सकते, लिख नहीं सकते पत्र में, और कितने विचार उन्हें प्रकृति का उदय होने से किसी को स्पष्टता से कहने का बन सकता नहीं। मतलब क्या है कि विचार को शांत करने का एक प्रयास चलता है, चंचलता से विचार बहुत हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है विचारों की। ज्ञानी है वो आत्म शांति के प्रयत्न में लगे हुए हैं, तो इस विचारों को कम कर देते हैं। इधर उधर की दूसरे की तो चिंता करते ही नहीं, लेकिन कोई पूछते हैं तो भी उत्तर बहुत संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में उत्तर देने का बनता है। फिलहाल यहाँ पर उतनी ज्यादा उपाधि नहीं रहती है, तो भी प्रवृत्ति रूप संघ होने से तथा क्षेत्र उताप रूप होने से थोड़े दिन के लिए यहाँ से निवृत्त होने का विचार होता है। ज़्यादा कामकाज तो नहीं है, फिर भी प्रवृत्ति में तो अच्छा नहीं लगता है, और बम्बई का क्षेत्र भी उताप रूप है, मैंने अकुलाहट वाला है, मैंने बम्बई अनुकूल नहीं है, साधना को अनुकूल नहीं है। कितने साल पहले की बात है, 104 साल पहले की बात है, अभी तो बहुत बातें बढ़ गई बम्बई में, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया। 1000 साल में जो फर्क होता है वो 100 साल में हो गया, इतना स्पीड से फेरफार हो गया है। उन दिनों में वो बम्बई के क्षेत्र में कंटाला आ जाता था, कंटाल जाते थे, उसको कहते हैं उताप रूप क्षेत्र है। लोगों के परिणाम ही ऐसे वहाँ होते हैं, माहौल ही ऐसा होता है जो साधना के अनुकूल नहीं है। इसलिए थोड़े दिन के लिए यहाँ से निवृत्त होने का विचार होता है। अब तो जो इस विषय में बनेगा वो ठीक, जो बनेगा सो बनेगा, यही विनती है। प्रणाम। परिणाम के विषय में दो पंक्ति में स्पष्टता लिखी है, बाकी अपने परिणाम की चर्चा की है। सुभाग भाई को वो पत्र लिखते थे, उसमें अपने परिणाम का विषय ज़्यादा लिखते थे। इसके बाद जो 583 नंबर का पत्र है उसमें भी अपने परिणाम की चर्चा बहुत लिखी है। स्वयं के परिणाम का कितना बारीक सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है वो पता चलता है इन पत्रों से। जी मंथन चिंतन तो चलता ही है ज्ञानी को, इससे आगे जाकर के जागृत अवस्था होने से जो भी परिणाम चलते हैं उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा चलता है, अवलोकन चलता है अच्छा, तो बता सकते हैं। जिसको जागृति नहीं है उनके क्या क्या परिणाम कैसे चल गए खुद को ही ख्याल नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है, उतना ध्यान नहीं रहता है। बहुत जागृत होते हैं, उनको ज़्यादा मालूम पड़ता है कि ऐसे ऐसे परिणाम होते रहते हैं, और उस विषय में उसकी गहराई में जाते हैं कि कितने रस वाले परिणाम हैं, किस अभिप्राय से हुए हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब मालूम पड़ता है, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता आ जाती है। પાછળ લીખો એ શકે દાદા એ 203 લીખ્યું છે એટલે પાછળ પાછળ પરિશિષ્ટમાં નથી, એમાં પણ નથી। हमको कोई स्पष्ट चिन्ह मिलते हैं कथा पत्र में, स्पष्ट चिन्ह के मिलते मैं तो सुभाग भाई ने नोट कर लू सब, इस पत्र में अपने परिणाम के विषय में ही पूरा पत्र लिखा गया है। हमको एक आत्म परिणति के सिवा दूसरे जो भी विषय हैं उसमें चित्त अव्यवस्थित रूप से वर्तता है, और ऐसा अव्यवस्थित बना लोक व्यवहार से प्रतिकूल होने से लोक व्यवहार में प्रवृत्ति करना गमता नहीं, अच्छा नहीं लगता, और उसका त्याग भी बन सकता नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, करना अच्छा भी नहीं लगता, छोड़ भी नहीं सकते। यही वेदना बहुत करके दिन के पूरे भाग में भोगने में आया करती है। क्या है कि एक आत्म परिणति सिवा हमारे आत्मा में स्थिर रहने के सिवा दूसरे विषय में हमारा उपयोग, हमारा उपयोग व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर सकता, मैंने हमारी सावधानी छूट गई है, बाह्य कार्य में सावधानी छूट गई है, ऐसी परिस्थिति हो गई है, और ऐसा अव्यवस्थित रूप से कार्य करने से जिस लोगों के साथ व्यवहार है, लोक व्यवहार है, वो मेल नहीं खाता, प्रतिकूल होता है, मेल नहीं खाता है, और मेल नहीं खाता है तो इसलिए वो व्यवहार पसंद नहीं आता, अणगमा होता है, करना गमता नहीं है, और छोड़ भी नहीं सकते, फंसे हुए हैं, ऐसे फंस गए हैं कि उसको छोड़ भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहते और छोड़ना हो नहीं सकता, इसलिए इसकी एक वेदना, उसका दुख होता है, और पूरे दिन में एक दुख दुख को भोगते हैं, ऐसी एक परिस्थिति बन गई है। ऐसे ज्ञानी सहज रूप से मुनि दशा में आ सकते हैं, क्यों कि लोक व्यवहार तो वैसे ही वो चाहे तो भी व्यवस्थित रूप से कर ही नहीं पाते, करना चाहे तो भी नहीं कर पाते, इतना उपयोगी नहीं चलता, इतना रस नहीं आता, इतनी उदासीनता बढ़ गई है। तो पूर्व प्रारब्ध है और पुरुषार्थ की कुछ कमी है, तो छोड़ा नहीं जाता, लेकिन पुरुषार्थ बढ़ते ही छोड़ने में देर नहीं लगेगी। ऐसी परिस्थिति में कोई दीक्षा अंगीकार करता है तो वो यथार्थ रूप से करता है, फिर उनका मन आत्मा में, उनके चित्त आत्मा में ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। वरना दीक्षा लेने के बाद सांसारिक सभी प्रकार की प्रवृत्ति तो छूट जाती है, लेकिन समाज की पंचायत ज़्यादा हो जाती है और वो प्रत्यक्ष दिखने में आती है। क्यों? और तो कोई काम रहा नहीं और आत्मा में परिणाम लगता नहीं, तो फिर तो दूसरे और लगेगा, कहीं ना कहीं तो लगेगा ही लगेगा, तो ये बात बिगड़ती है। जिसको संसार में रहते हुए भी परिणाम संसार में लगता नहीं, संसार के कार्य में परिणाम लगाना चाहे तो भी लगता नहीं है, ऐसी स्थिति सहज हो गई है, उनकी जो सर्वसंग परित्याग रूप मुनि दशा है, वो मुनि दशा सही रूप से आत्मकार्य रूप कार्य करने लगती है, तो स्वरूप में लीन रहते हैं। तो देर नहीं लगती। क्या है कि पिछले 500-700 साल में भावलिंगी संत मुनिराज उत्पन्न नहीं हुए हैं। टोडरमल जी लिखते हैं 200 साल पहले कि 500-600 सैकड़ा हो गया, हमारे संप्रदाय में कोई भावलिंगी संत देखने में नहीं आए। मैंने सही मुनि दशा जिसको कहते हैं वो देखने में नहीं आई। दूसरी बात बनती है, अगर कोई मुनि मिल का संग मिल जाता तो बात कोई दूसरी बन जाती। ऐसी उदास दशा थी संसार में। हाँ, गुरुदेव क्या कहते थे मालूम है? कि अगर कोई भावलिंगी संत मिल जाए तो हम तो इसके पीछे चल पड़ेंगे। वो तो उतना उतनी गरज रहती है ज्ञानी को भी कि ऐसे गुरु कहाँ से जो चलते फिरते सिद्ध होते हैं, ऐसे ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, चलते फिरते सिद्ध कब मिले हैं, चलते फिरते सिद्ध जैसे होते हैं। जिसको गंधर्व देव नमस्कार करते हैं नमस्कार मंत्र में, नमो लोए त्रिकालवर्ती सब साहुणम, तीनों काल में जितने भी साधु हुए हैं और होने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार है। वो साधु पद कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत पवित्र दशा है। केवल ज्ञान लेने के लिए दिन रात पुरुषार्थ में लगे रहते हैं और लोगों का संग नहीं चाहते हुए वो जंगल में रहते हैं। जब परिवार के साथ नहीं रहना है तो फिर लोगों के साथ क्यों रहेंगे? अगर लोगों के बीच में रहना है तो परिवार में कौन बुरी बुरी चीज, क्या बुरी चीज है? वो तो सब प्रेम करते स्नेह करते हैं। समझ में नहीं आया? जब जब आर का विकल्प उठता है तो वो नगर में आते हैं 12 बजे, दोपहर को आते हैं एक दफे, अगर आहार का विकल्प होता है तो। कभी ध्यान ज्ञान ध्यान में उतने मस्त रहते हैं तो आहार का विकल्प नहीं आता है, तो उस दिन उपवास बोला जाता है, उनको पछाड़ लेने की जरूरत नहीं। कम सुनाई देता है। हाँ वही अच्छा, वो सही, वही वही सही विधि है कि हम हमारा खाना पकाएं और कोई मुनि महाराज आ जाए तो हम हमारे में से उनको आहार खिलाएं। हैं ये तो उद्देशिक होते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध पद्धति है, यानी वो अपराध है। मुनिराज को ऐसा आहार लेने का निषेध है शास्त्र में। हैं वो तो अभी तो द्रविलिंग भी नहीं है, जो द्रविलिंग शुद्ध होता है भले ही भावलिंग, वो भी उद्देशिक आहार नहीं लेंगे तो व्यवहार भी नहीं रहा। भाव में आत्मा का आत्म परिणाम होना वो तो बहुत अलग बात है, लेकिन ये तो विकल्पात्मक बात है, उसमें भी जो नियम है वो नियम तोड़ते हैं, वो तो द्रविलिंग भी नहीं है, अभी तो लिंगाभास है, द्रविलिंग भी नहीं है। और कुंदकुंद आचार्य ने भाव पावड़ में तो ऐसे मुनियों को नमस्कार करने का निषेध किया है। ऐसी ठेकेदारी लेने का किसने कहा बताइए? हैं ठीक है, लोग भाग जो हैं उनको इसके योग्य उपदेश दो, उनकी भूमिका के अनुसार उपदेश दो, वो तो साधु होते ही उपदेश दे सकते, ऐसी बात नहीं है कोई, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे आत्मा का बिगाड़ करके हम किसका सुधार कर सकेंगे? खुद हम हमारा बिगाड़ करेंगे तो हम दूसरों का सुधार कैसे करेंगे? वो बात कहाँ से न्याय संपन्न है? वो बात न्याय से भी बैठती नहीं है। मतलब वो तो एक बचाव की बात है, और कोई बात नहीं, वेग आर्ग्यूमेंट है, वो सही आर्ग्यूमेंट भी नहीं। जिसकी जैसी होनहार होगी वैसा होगा। हम तो हमारा काम तो ठीक करें, दूसरे की ठेकेदारी तो हमने नहीं ली ना, न कोई हमारे पर कोई बात थोपी गई है कि तो दूसरी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ठीक। विद्या को तोड़ने का अधिकार, लाइसेंस किसी को मिला है क्या कि आप जिन आज्ञा को तोड़ करके कुछ भी कर सकते हो? ये बात है ही नहीं। टोडरमल जी साफ साफ लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि जैन दर्शन में ऐसी आमनाई है, आमनाई माने कानून है, पाबंदी है कि पहले तो तत्व ज्ञान का ठीक अभ्यास करें चारों पड़खों से, फिर अपनी योग्यता देख करके जितनी शक्ति है उतना त्याग करें। तो पहले तो कोई समझे नहीं, सम्यक दर्शन में कोई समझते नहीं, सम्यक दर्शन क्या चीज है, कैसे होता है, मुमुक्षुता क्या चीज है, कैसे होती है, कोई पता नहीं, और त्याग करके गुरु बन के बैठ जाते हैं, जैसे ठीक लगे वैसा उपदेश देते हैं या गड़बड़ कर लेते हैं। तो इससे तो नुकसान, अपने को भी नुकसान होने वाला है, दूसरे को भी नुकसान ही होने वाला है, इसमें कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो कहते हैं कि हम दूसरे के फायदे के लिए करते हैं लेकिन दूसरे को भी नुकसान होता है और खुद को भी नुकसान होता है। उल्टे रास्ते पे चढ़ जाते हैं। तो मिथ्या वासना, मिथ्या आशा, ये सब गड़बड़ चलती है, और धर्म से और दूर जाएंगे, सही धर्म से और दूर चले जाएंगे। ये थोड़ा नुकसान है क्या? तो बहुत नुकसान है। इसलिए ये लोग सही उपदेश देने वाले के प्रति बहुत नाराज है। क्यों है? सत्य को सुनना तो पसंद नहीं है लेकिन सत्य बात सामने आएगी तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, वो डर भी है उसमें, इसलिए कंपटीशन में आ जाते हैं कि चलो हम इनकी दुकान तोड़ेंगे, हमारी दुकान वो तोड़ने को आ रहे हैं तो हम उनकी दुकान तोड़ेंगे। अरे भाई, हमको कोई किसी की दुकान नहीं तोड़नी है, सही बात हम हमारे आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, उस सही सम्यक मार्ग पे अगर किसी को चलना है तो ठीक है, नहीं चलना है तो ये कोई थोपने की चीज नहीं है। आप आए हैं तो ये बात थोपनी चाहिए, वो बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। आप भी सोचो, हमको ये बात सही लगी है, ठीक विचार करने पर आपको भी ठीक लगेगी, आप ठीक विचार करिएगा, उतनी सी बात है। फिर भी अगर आपको ठीक नहीं लगी तो हमारा कोई आग्रह नहीं है। क्यों? कि हमको कोई लेना देना तो है ही नहीं। ज्ञानी तो निष्प्रह होते हैं, मुनिराज भी निष्प्रह होते हैं, उनको कोई लेने के लिए तो कोई काम करते नहीं, और मुनिराज तो कोई व्यवस्था स्वीकार ही नहीं करते नहीं। इसके निमित्त से बनाया हुआ खाना लेने को तैयार नहीं है, कपड़े तो है ही नहीं इनको, मकान तो है ही नहीं, जो बात कुछ खाने की है वो भी इनके लिए बनाओ तो लेने वाले नहीं है, तो इतने निष्प्रह है, फिर वो गलत बात क्यों करेंगे? तो अपने आत्म कल्याण की बात करते करते रास्ता दिखाते हैं, जिसको चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो स्वतंत्र हैं आप लोग, कोई हमारा आग्रह नहीं है, ऐसी बात होनी चाहिए। हम लिखते हैं, खाने में, पीने में, बोलने में, सोने में, लिखने में या दूसरे व्यावहारिक कार्य में जैसा चाहे वैसा भान प्रवृत्तता नहीं है। मैंने सावधानी छूट गई है, खाना पीन खान पीन में भी सावधानी, क्या खाया नहीं खाया ध्यान नहीं रहता। ऐसे परिणाम आत्मा में ऐसे लगते हैं, इतने आत्मा में सावधानी है कि खान पीन के विषय में ध्यान नहीं रहता। और वैसे प्रसंग तो रहते हैं, रहते होने से आत्म परिणति को स्वतंत्र प्रकट रूप से अनुसरने में विपत्ति आया करती है, और उस विषय में भी प्रतिक्षण क्षणे क्षणे दुख रहा करता है। देखो जो भी उदय है, खाने का, पीने का, बोलने का, सोने का, वो आत्म परिणति को रोधक है, आत्म परिणति की स्वतंत्रता को परतंत्र कर रहा है, इसका हमें दुख है। रस तो नहीं है, लेकिन ये परिणाम, उदय के परिणाम और उदय की प्रवृत्ति हमारे आत्म कार्य के प्रतिकूल है, ऐसी दशा है। अट्ठाईस साल की उम्र में वो लिख रहे हैं, 20 साल की उम्र में बिजनेस में लगे थे और 2-4 साल, 3-4 साल में तो पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग को पा लिया। अब विरक्तता बढ़ गई है तो छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 28 साल की उम्र में तो छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि हमको ये प्रवृत्ति नहीं चाहिए, हमको हमारे आत्मा में ही रहना है। दूसरी प्रवृत्ति तो ठीक, खाने पीने में भी यही स्थिति है। कि बेभान भान भान नहीं रहता है, ख्याल नहीं रहता है क्या खाया क्या नहीं खाया। लोगों को तो ये चीज भाती है नहीं भाती है, ये बात हो जाती है। यहाँ तो ध्यान ही नहीं रहता क्या खाया क्या नहीं खाया, ऐसी परिस्थिति में वो चलते हैं। और कुछ भी विकल्प होते हैं तो उसका दुख होता है। अचलित आत्मा रूप से रहने की स्थिति में ही चित्त की इच्छा रहती है, चितेच्छा, मैंने चित्त की इच्छा। अचलित चलायमान नहीं हुए ऐसे आत्मा में रहना है, ऐसे हमारे अभिप्राय है। चितेच्छा मैंने अभिप्राय, हमारा अभिप्राय ऐसा है कि बस अचलित रूप से हमारे स्वरूप में स्थिर रहे हो जाए हम। और ऊपर बताया ऐसे प्रसंगों की आपत्ति के लिए, ये सब आपत्ति रूप है, खाना पीना बोलना सोना व्यवहारिक कार्य, ये सब आपत्ति है। ये सब आपत्ति के कारण से अचलित आत्मस्थिति, वही आत्मस्थिति, मैंने अचलित आत्मस्थिति में कितना, मैंने थोड़ा बहुत वियोग रहता है यही कारण से, वरना तो हम स्थिर हो जाते हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं हो पाते हैं, इसका वियोग रहता है स्थिति का, ऐसा होता है। और यह वियोग मात्र परीक्षा से रहा है, स्वेच्छा के कारण से नहीं रहा है। थोड़ा परेच्छारीपना में चलते हैं इसलिए ऐसी स्थिति हो रही है। यह एक गंभीर वेदना बताएं, यह एक गंभीर वेदना प्रतिक्षण हुआ करती है। मैंने जिन लोगों के साथ घर में और बिजनेस में है, उन लोगों की इच्छा का अनुसरण करना पड़ता है, नहीं चाहे तो भी। अगर ऐसा नहीं करें तो बहुत उन लोगों को दुख पहुँचे, ऐसी स्थिति हो जाती। यानी जो लोग इनके पार्टनर्स थे, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स में वो सब काम चलता था, उन लोगों की तो संपत्ति का डर लगता था कि हमारी तो संपत्ति पूरी चली जाएगी, तो काम जो चौपट हो जाएगा, बिजनेस पूरा चौपट हो जाएगा, तो हमारी तो पूरी संपत्ति चली जाएगी। तो उन लोगों के परिणाम बहुत बिगड़ जाते हैं। और शुरू शुरू में कुछ प्रॉमिस किया होगा कि काम हम संभालेंगे, और काम संभालने की शक्ति भी बहुत थी, बहुत बुद्धिमान थे, उम्र छोटी थी लेकिन बुद्धिमान बहुत थे, सांसारिक कार्य में भी बहुत विचक्षणता थी। लोग तो ये समझते हैं कि जिसमें काम करने की, संसार के काम करने की विचक्षणता, होशियारी, योग्यता नहीं होती है, वही भजन भगत बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी थी। संसार के बुद्धिमान लोगों का भी पानी उतर जाए, उतनी विचक्षणता और उतना दिमाग था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता का एक नया स्तर था कि उसका वो त्याग करना चाहते थे। जिसमें बहुत बुद्धि लगा सकते थे उसी विषय का वो त्याग करना चाहते थे। ये इनकी बुद्धि की प्रशंसा करनी पड़े ऐसी बात, स्तुति करनी पड़े ऐसी बात है। ऐसे बुद्धिमान को तो संसार भी मान्य करते हैं कि देखो बहुत बुद्धि वाला आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। लेकिन ये जो अति बुद्धिमान होते हैं ज्ञानी, वो मान्य करने वाले को इकाई त्याग कर देते हैं। इसकी बुद्धि का एक अलौकिक स्तर है, उस लेवल पे वो बात चल रही है, उस लेवल की वो बात चल रही है। तो स्वेच्छा से तो नहीं कर रहे हैं, मैंने व्यापार का कोई रस नहीं है, कोई कमाने की इच्छा नहीं है, कमाई करके कुछ भोगने की इच्छा भी नहीं है, फिर भी परिस्थिति बस ये सब करना पड़ता है, उसकी हमको वेदना रहती है। जैसे अपने आप पर कोई जबरदस्ती खुद ही करते हैं तो उसकी जो वेदना रहती है, ऐसी वेदना रहा करती है। इसी भाव में, वर्तमान भाव में, थोड़े समय पहले व्यवहार में भी स्मृति तीव्र थी, स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी, इतनी स्मरण शक्ति थी कि 18 साल की उम्र में शतावधान किए थे। शतावधान मान जानते हो, शतावधान क्या होता है? एक साथ 100 चीज को स्मरण में रखना। जैसे 100 आदमी अलग अलग कार्य करते हैं, कोई लिखते हैं, कोई बोलते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई गणित का सवाल है, कोई विज्ञान का, कोई घंटा बजाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। एक ही साथ 100 को देख लेते हैं और सबका स्मरण रहता है, एक पीछे पीछे सबको बोल देते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, फिर आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था। उसको बोलते हैं शतावधान, एक साथ 100 चीज को स्मरण में रख लेना। और उतनी तीव्र स्मृति थी कि अगर कोई शास्त्रावधान करना है तो वो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा बोलते थे। एक 700 क्या, 1000 चीज याद रखना पड़े तो हम रख सकते हैं, इतनी तीव्र स्मृति वाले थे वो। था ऐसा ही था, गॉड गिफ्ट ही था। मैंने पूर्व भव से कुछ लेके आए थे तो बम्बई में उन्होंने म्यूनिसिपालिटी का मेयर और कुछ यूरोपियन जो लोग थे, अधिकारी लोग थे, उन लोगों की उपस्थिति में एक प्रयोग दिखाया शतावधान का, तो पेपरों में आया कि एक 18 साल का लड़का है और ऐसा ऐसा चमत्कारी प्रयोग करता है, और सबों के बीच में दिखाया, उसका फोटो भी लिया गया है। और इन दोनों में जो अखबार थे, अंग्रेजी और गुजराती दोनों अखबार में, बम्बई के अखबार में ये सब बातें आई हैं, और ये अखबार आज भी लोगों ने रखे हैं कि तो देखो ये बात ऐसी तरह इस तरह से आई थी। काफ़ी लोग आए कि आपको फॉरेन भेजे, आपको बनारस भेजे, काशी भेजे, उधर भेजे, उधर भेजे, लेकिन वो कहीं गए नहीं। खुद को आत्म साधना करनी थी तो उन्होंने वो बात को समेट लिया, कोई प्रयोग आगे नहीं किया, बढ़ाया नहीं। और जो भी इनके पास आते थे बोलते थे कि हमको कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, हमको कोई लौकिक इज्जत नहीं चाहिए, हमको तो हमारा आत्म कार्य करना है। तो तब से उन्होंने ये प्रवृत्ति छोड़ दी और अपने आत्म कार्य में लग गए। उस सिलसिले में कुछ लोगों ने बोले कि बम्बई में हम एक पीढ़ी शुरू करें, फर्म शुरू करें, अगर आप कोई काम संभालते हैं तो। परिवार में आर्थिक स्थिति सामान्य थी और वो बड़े थे दो भाई में, तो उन्होंने परिवार का वहन करने के लिए वो बोझा उठाया, फिर भी आत्म कार्य में चालू रखा, तो उसमें प्रगति किया और फिर आगे बढ़े थे, वो पीछे हट करने का प्रसंग आ गया। व्यापार तो बहुत बढ़ गया, कमाई भी काफ़ी हो गई उस जमाने में, तो उतने विचक्षण भी थे, पुण्यशाली भी थे, लेकिन वैराग्य बढ़ गया था तो छोड़ने का विचार बहुत रहता है। तो कहते हैं कि जो पहले तीव्र स्मृति थी, ऐसी जो स्मृति है वो मंद हो गई है, तो स्मृति में भी हमारी सावधानी नहीं है, क्योंकि स्मरण रखने में सावधानी होती थी, अभी वो सावधानी नहीं है, ऐसा लिख रहे हैं। तो उस विषय में थोड़ा अपना वर्तमान परिस्थिति का बयान किया है। कल के स्वाध्याय में समय होगा।